ओम शांति। आज का टॉपिक है लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। तो इस टॉपिक को हम दोहरी दृष्टि से देखेंगे, नेगेटिव व्यू से भी और पॉजिटिव व्यू से भी। इस ब्राह्मण जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके भी कौन सी बातें हमको नहीं करनी है, कौन सी करनी है, उनकी थोड़ी जानकारी हमको होना जरूरी है। अगर हम संसार की तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योग के क्षेत्र में ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो थोड़ा थोड़ा करके फिर ज्यादा हम सबको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित भी करती हैं, और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे मार्ग में बाधक भी बन जाती हैं। अगर हम इस लाइफ में देखें, ब्राह्मण लाइफ में, तो कोई पुरुषार्थ की रेस में बहुत आगे जा रहे होते हैं, बहुत टाइम भी देते हैं पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, लेकिन लाइफ में वो सकारात्मक परिवर्तन जितना होना चाहिए दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं कोई उसका कारण है। और कुछ ऐसे भी पुरुषार्थ की दौड़ में ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करते, थोड़ा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलाव बहुत दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? सो पर अटेंशन, क्वालिटी पर ध्यान, क्वांटिटी पर नहीं। हाँ, जितना खा रहे उतना हजम हो रहा है उनको, कोई दिखावा नहीं है। हाँ, विशेष अटेंशन है उनका अपने ऊपर। अगर हम पुरुषार्थ ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं हम परचिंतन है, प्रपंच में है, तो हमारा लेस ज्यादा हो जाता है। प्लस भी हो रहा है लेकिन प्लस के साथ साथ लेस भी हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन लीकेज नहीं है, अटेंशन है, परचिंतन से सेफ हैं, व्यर्थ से हम सेफ हैं, अपने व्यवहारिकता में अटेंशन रखते हैं, तो फिर परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है। तो ये थोड़ा पुरुषार्थ है और ज्यादा प्राप्ति है, और दूसरे वाला ज्यादा पुरुषार्थ है थोड़ी प्राप्ति है। तो दोनों में से कौन सा करना चाहिए? ज्यादा पुरुषार्थ ज्यादा प्राप्ति नहीं, अटेंशन तो दोनों को रखना पड़ता है। तो जितना भी हम पुरुषार्थ करें तो क्वांटिटी की जाए क्वालिटी वाला होना चाहिए, ताकि इस जीवन का हम आनंद ले सके। अगर हमने ब्राह्मण लाइफ का भी आनंद नहीं लिया तो क्या उसको कहेंगे ब्राह्मण लाइफ का, फिर इतना मीनिंग कहाँ हुआ? जी तो संसार वाले भी लोग रहे हैं, और भी हम भी टेंशन में जिए, दुख में जिए, तो फिर इसका इतना आनंद कैसे ले पाएंगे? तो एक है, हमें अपनी लीकेज को रोकना है। थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा प्राप्ति, जितना समय हम बैठे उतना समय मन को एकाग्र करने के धीरे धीरे आदत डालनी है। और मन को एकाग्र करने के हमें कुछ टिप्स चाहिए, कुछ ऐसे सूत्र चाहिए जो हम मन को एकाग्र कर सके। और उसके लिए, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छी विधि है ज्ञान को याद करना। ज्ञान के जो भिन्न भिन्न पॉइंट्स बाबा हमको देते हैं वो हमें याद करने हैं। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ ही मुरली मेथड के ऊपर चिंतन हुआ था, तो दो चार दिन तो हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। फिर हम ऐसे वॉकिंग करते करते जा रहे थे तो सोचा देखते हैं कितने पॉइंट याद आते हैं। तो मन इतना एकाग्र हो जाता है, दो चार पॉइंट, चार पांच पॉइंट भूल गए लेकिन फिर भी मन बहुत एकाग्र हो जाता है उसमें। तो ज्ञान के पॉइंट को हम अगर बार बार बुद्धि में दौड़ाते हैं तो मनन शक्ति हमारी बढ़ती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो धीरे धीरे हम अपनी मेमोरी को बढ़ाना है। जैसे वो 26 मेथड कौन से थे तो हमने फिर अपने तरीके से उनको बनाया। यहां तो फिर अलग अलग हमने फिर अल्फाबेटिकली बनाया उसको, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, और उनमें से फिर हमको कौन से सहज है जो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे हमको याद हो रहे, पूरे के पूरे करने हैं, नहीं। जितना हमारे अनुसार हमें आसान लगते हैं और जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं उन पर हमें ज्यादा फोकस पहले करना है। बताया ना उस दिन जो क्वेश्चन पेपर होता है, अगर क्वेश्चंस उसमें चार पांच टफ हैं बाकी आसान हैं, तो हम टफ की तरफ ध्यान नहीं देते पहले, क्योंकि अगर उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आसान भी भूल जाता है। तो पहले पहले से जो आसान सूत्र हैं, आसान बातें हैं, पुरुषार्थ के आसान बिंदु हैं, उसको हम याद करें। तो अल्फाबेटिकली हमने उसको जो बनाया था ए से जेड तक, ऑडियो मेथड, बार बार सुनना ऑडियो। दूसरा था आंसर चर्निंग मेथड, फिर बिजार मेथड माना अनोखी विधि, नए तरीके से मुरली को याद करना है। फिर कैची मेथड, उसको पकड़ना। फिर कंट्रास्ट, तुलना कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, बाबा किस किस चीज से भेंट करते हैं, जैसे ब्राह्मणी है हम ब्राह्मण हैं, उस तरीके से बाबा भेंट करते हैं, तो उस पर हम कंट्रास्ट कहाँ कहाँ करते हैं, तुम ब्राह्मण कौन से, दुनिया वाले ब्राह्मण कैसे हैं, तो ये वाला हो गया कंट्रास्ट। फिर था हाईलाइट, डी से छुट्टी है, डेड टेक्स्ट टू ड्रिल है वो डेड जाने उस तरह से तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल वही तक रहे। तो एच ऐसे हाईलाइट अंडरलाइन करना, जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। डी से डिलीट कर देना, किसको जो याद है, पुराने संस्कार को डिलीट याद कर, डिलीट मतलब पुराने संस्कार, क्योंकि ये मुरली प्रभु के, तो मुरली डिलीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुरली में कौन सी बातें बाबा ने की जिनको डिलीट करना वो याद कर सकते है जी। हाँ, डिलीट करें नहीं, मुरली में जो बाबा कहते हैं डिलीट, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तो ये बातें उसमें रख सकते हैं। फिर हाईलाइट और अंडरलाइन उसको कर सकते हैं। फिर मुरली मेमोराइजेशन, मुरली को पर्सनलाइजेशन, अपना व्यक्तिगत उसको बनाना, अपने तरीके से उसको बनाना, जैसे बाबा जो भी टॉपिक लेते थे वही टॉपिक आगे बढ़ता जाता है, तो उसको अपना बनाना। फिर मेंटल मुरली, मेंटल कौन सा था, मेंटल मेमोरी मेथड, मेंटल मूवी मेथड, उसको मूवी की तरह से देखें, मुरली जो मूवी की तरह जैसे चल रही है, तो मेंटल मुरली मेथड मूवी, हाँ मेंटल मूवी मेथड मुरली। मैं फिर मेमोराइजेशन मेथड, ज्यादा से ज्यादा याद करने की प्रैक्टिस करनी। फिर नेम, बाबा कौन कौन सा नेम नाम लेते हैं मुरलियों में, किस किस का लेते हैं, तो वो हम उसको याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन मेथड, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फिर रीडिंग मेथड, रीडिंग लव और रिलेशनशिप, कौन कौन से रिलेशन बाबा मुरली में हम याद करते हैं, बाप टीचर सतगुरु साजन प्रीतम, जो जो भी मेथड है, तो उस मेथड से हम मुरली को याद कर सकते हैं। एस सेंटेंस मेथड, कोई वाक्य, कोई विशेष एक वाक्य है जो हमारे दिल को टच कर जाता है, जिस वाक्य से हमारा एक ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होने की उसमें संभावना है, हमारे दिल को टच करता है, उसको पकड़ना। फिर स्टॉप टू मेथड, बीच में जो रुक बाबा, स्टॉपिंग बिटवीन सेंटेंस के बीच में, या मुरली को कोई वाक्य आता है, पहरा आता है, उसके बीच में रुक के उस पर चिंतन करना। फिर सेल्फ चेकिंग, उसमें मुरली में कौन कौन से चेकिंग बिंदु हैं, उनको हमको याद करना धीरे धीरे। फिर है स्टोरी मेथड, हाँ स्टोरी मेथड, कहानियां कौन कौन सी, और स्पिरिचुअल टूर मेथड, अर्थात कौन से तीर्थों को बाबा याद करते हैं, तीन लोकों की सैर स्पिरिचुअल टूर, कहां से कहां हम अपनी बुद्धि को जुड़ा सकते हैं स्वर्ग की ओर, तीनों लोकों की ओर। फिर है फोर सब्जेक्ट मेथड, फिर टी से टॉपिक, कौन कौन से बाबा ने उसमें टॉपिक दिए हैं, और टेक्स्ट टू ड्रिल, जो भी मुरली है अगर उसको हम ड्रिल में परिवर्तन कर दें, याद करने की भी, जैसे हम ड्रिल करते हैं ऐसे बैठे बैठे मुरली को ड्रिल में तब्दील कर दें, तो वो भी एक योग का बहुत अच्छा मेथड हो जाता है, टेक्स्ट टू ड्रिल। फिर विजुअलाइजेशन मेथड, मुरली को विजुअलाइज करना है, अलग अलग उसमें दृश्य अपने को क्रिएट करने हैं, तो वो भी एक याद करने का मेथड है। और लास्ट में है वर्ड मेथड, शब्द मेथड, कोई भी एक अच्छा शब्द लगता है तो हम उसको भी पकड़ के मुरली को याद कर सकते हैं। तो ये तो मुरली को याद करने की विधि, अर्थात धीरे धीरे अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, तो भिन्न भिन्न जो मुरली में पॉइंट के बाबा के भिन्न भिन्न बिंदु आते हैं उनको हम याद करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो योग इतना पावरफुल नहीं होगा। बिना ज्ञान के योग करेंगे तो वो उसमें विशेष एक ताकत नहीं आती है, एक स्वयं में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। फिर वो टाइम, जैसे हम टाइम को पास कर रहे हैं, फिर एक नॉर्मल रूटीन बन जाती है। तो पुरुषार्थ में नवीनता लाने के लिए इस तरह के जो हमको विभिन्न मार्गदर्शन मिलते हैं उसको हम पकड़ के अपना बनाने का हमको धीरे धीरे उसका प्रयास करना है, और ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है, इसके लिए थोड़ी धैर्यता चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान हमको तुरंत ग्रहण हो जाएगा। जब से हमने ब्राह्मण जीवन लिया है तब से अभी तक जो भी हमारे में बदलाव हुआ है तो वो धीरे धीरे हुआ, उसकी प्रक्रिया तुरंत नहीं है। तो ये ज्ञान को हमको धीरे धीरे पहले अपनी बुद्धि में सेट करना बिठाना है, जो भी हमको अच्छा लगता है पहले, टफ वाला नहीं, जो अच्छा लगता है पहले उसको हमको ग्रहण करना है। धीरे धीरे जब हमारी बुद्धि क्रिएटिव माइंड हो जाएगी तो इस ज्ञान को हम बहुत सहज तरीके से इसका आनंद ले सकते हैं। तो ये था मेथड। दूसरा है, हम करते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ओम शांति वन का निर्माण हुआ था 1983 में, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके, इसका तो तुरंत इतने बड़े भवन का निर्माण तुरंत नहीं हुआ, 10-10 पैसे इकट्ठे करके हुआ है। तो हमारे पुरुषार्थ की जो विभिन्न विधियां हैं तो थोड़ी थोड़ी हमको उसको प्रैक्टिस करनी है। जैसे बहुत सारी धारणाएं की बातें हैं जो हमको धीरे धीरे अपनी लाइफ में लानी है, तुरंत नहीं होती है। जैसे एकांत का है, पहले से अगर हमारी आदत है बहुत हलचल में रहने की है, ज्यादा लोगों के बीच में ज्यादा बोलने की आदत है, तो तुरंत एकांत नहीं हो सकता वो। उसके लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके खुद ही हमको ढूंढना है मार्ग। तो थोड़ा थोड़ा हमको एकांत की आदत डालनी है, फिर थोड़ा थोड़ा मौन की आदत डालनी है। कौन से स्थान पर कहां हम मौन रह सकते हैं, जैसे ज्यादा परिचर्चा चल रही है, 10 लोग बैठे हैं, 3-4 आपस में बोल रहे हैं तो हम भी बीच में बोल पड़ते हैं, तो वहां हम मौन रहना भी सीखें। कहां क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां मौन रहना है, तो हमको मौन करने की भी थोड़ी आदत, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इस बॉडी से डिटैच होने की आदत, अशरीरी बनने की आदत, जो बाबा कहते हैं ड्रिल करो बार बार, अशरीरी होने की आदत डालो, देह से न्यारे होने की आदत डालो। जैसे हम इस देह में मेहमान हैं, जो भी विभिन्न सोमान है तो थोड़ी थोड़ी वो भी आदतें डालनी है, ताकि जो समय पर वो बिंदु हमको, ज्ञान के बिंदु हमारी स्थिति को ऊंचा उठा सके। फिर अव्यक्त स्थिति की आदत या बीज रूप, इस तरह की अशरीरी बनने की, निराकारी स्टेज की, परम धाम में आने जाने की, बार बार इस बॉडी से डिटैच होकर परम धाम, इस बॉडी में सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, जो गत संडे को बीज रूप स्थिति की निशानियां थी, तो इससे क्या संकल्प धैर्यवत होंगे, जो एक मुरली थे संकल्प धैर्यवत। ये तो संकल्प जो संसारिक संकल्प है उनकी गति बड़ी फास्ट होती है, लेकिन जो बाबा के ज्ञान के संकल्प है ये संकल्प बहुत समर्थ संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है, क्वालिटी वाले हैं, और ये आत्मा को बहुत सुख देने वाले, क्योंकि ये आत्मा की असली खुराक है। और संसारिक जो जितने भी संकल्प हैं वो सारे हमारी देह को हलचल में लाने वाले हैं, आत्मा के पतन के हैं वो। लेकिन जो बाबा की मुरली के महावाक्य हैं, जिससे हमारा उत्थान होगा, प्रगति होगी, तो संकल्प धैर्यवत होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अगर संकल्प बाहर वाले संकल्प ज्यादा चलते हैं तो क्या होता है, माथा खाली खाली हो जाता है, उनकी गति भी कितनी फास्ट होती है। तो धीरे धीरे करके हमको जो मुरली के महावाक्य हैं उसको अपना बनाना है, जो भिन्न भिन्न प्रैक्टिस है अपना बनाना है। छोटी छोटी बातें होती हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी कहते हैं हथौड़ा लग जाता है। लेकिन कौन सी बातें थोड़ी थोड़ी नहीं करनी है हमको, जैसे हम कहीं बैठे हैं, कोई अगर परचिंतन कर रहा है, अगर हम उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं तो हम यही बोलेंगे थोड़ा हाँ तो किया, लेकिन वो थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके जगदीश भाई कितना हथौड़ा लग जाएगा, तो वो बातें नहीं करनी है। फिर दूसरा, आपको पुरुषार्थ भी धीरे धीरे, ऐसे नहीं करना है कि पुरुषार्थ धीरे धीरे कर देना, नहीं, अभी वो से पहले वाला समय नहीं रहा, अभी तो बाबा कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट, इसका भी मार्जन अभी इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारे पास जो समय है उस समय का उचित प्रयोग करके इसका पूरा फायदा लें। अर्थात समय का भी हमको कोई एक रणनीति तैयार करनी है, एक प्रोग्राम प्लानर तैयार करना है, जिसके अंतर्गत हम अपने समय को पूरा सफल कर सके। कोई सेवा ऐसी होती है जिन सेवाओं में हम अपना पुरुषार्थ या अपनी प्रगति कर सकते हैं, और बीच बीच में उनमें कोई ऑब्स्टेकल भी आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो जिस समय हमें बाधा आती है तो उस समय को हम दूसरी सेवा में भी लगा सकते हैं। हमें देखना है, अगर हमें कोई परचिंतन वाला मिलता है, कोई बड़ा है या छोटा है, तो उस समय हम उसी समय को दूसरी सेवा में लगा सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले या हम शांतिवन में गाइड कर रहा तो एक भाई बीच में मिल जाता था, वो पकड़ ही लेता था, सुनाना शुरू कर देता था, तो दो चार दिन तो सुना हमने, हमने सोचा क्या किया जाए, अभी इसको तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तो हमने फिर भोजन बांटना शुरू कर दिया उधर डाइनिंग हॉल में तो उसमें भी बहुत मजा आया। तो अपना टाइम अगर है इस पुरुषार्थ में, पुरुषार्थी मार्ग में भी, ब्राह्मण लाइफ में भी, कहीं ऐसे सर्कमस्टांस है जहां हमको सभा में बैठना पड़ता है या उस बातें सुननी पड़ती हैं, तो हमको वहां से निवृत्त होने के लिए कि दूसरी सेवा का चयन करना पड़ेगा, जो सेवा से हम दुआएं अर्जित कर सकें। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में हमें आगे बढ़ने का सबसे श्रेष्ठ साधन है दुआएं, मदद करना किसी की, मदद करने के बाद जो दुआएं प्राप्त होंगी वो समय पर, तो वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को सहज ही आगे बढ़ा सकती हैं। समय पर मदद करना, सहयोग करना किसी की, चाहे वो मनसा है, वाचा, कर्मणा या स्थूल सूक्ष्म कोई भी है, तो मदद करने से हम किसी को सहयोग देकर दुआएं अर्जित कर सकते हैं और हमारा पुरुषार्थ फिर निर्विघ्न होता जाता है। और कहीं कहीं बहुत सारी बातें ऐसी होती जो इस आज की मुरली में भी है, सहन करने की, समाने की, बहुत सारी बातें हमको समानी पड़ती हैं, अगर हम समाते नहीं उनको फैलाते हैं, तो फैलाने से वायुमंडल भी खराब और एक सूक्ष्म रूप से आत्मा के ऊपर जो है बोझ चढ़ जाता है और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बाबा कहते हैं ना, जन्मते हम बाबा ने हर बच्चे को अपने सब खजाने दे दिए, तो कौन कौन से खजाने को हम कहां गवा रहे हैं, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी बाबा से सर्व शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, जो भी खजाने मिले हैं, उसको हम स्वयं के प्रति अप्लाई करके दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जो पुरुषार्थ के टिप्स हैं हमको आगे बढ़ाते हैं। जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो मुंबई में एक भिखारी की उस दौरान मृत्यु हो गई थी शायद, तो उसके पास करोड़ों रुपया मिला था, तो थोड़ा थोड़ा करके कितना इकट्ठा हो गया उसका। तो ऐसे हम इस लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके पद्मा पद्मपति बाबा हमको बनाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसके पॉजिटिव व्यू से हमको देखना है, उसका नेगेटिव व्यू से देखना है, किस तरीके से हमारी प्रगति हो सकती है। हम भोजन खाते हैं तो धीरे धीरे खाते हैं, अगर उसको फास्ट खाएंगे तो क्या होगा, वो ताकत नहीं बनता है। ऐसे इस ज्ञान को भी धीरे धीरे खाना है, जल्दी जल्दी मुरली पढ़ने लेनी है। जैसे एक बार समझ में नहीं आते, जैसे कल कह रहे थे ना, 10 बार पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रही, अब बताओ 10 बार पढ़ने के बाद समझ नहीं आएगी तो बाकी हाल क्या होगा। तो बात तो बिल्कुल सही है, 100% ठीक है कि मुरली एक बार तुरंत नहीं समझ में आती है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, 5-7 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसके जो अर्थ होते हैं तो परिवर्तन होने लगते हैं वो। नहीं तो पहला हमारा जो पढ़ते हैं उसका दृष्टिकोण उस समय हमारा कुछ और हो जाता है, फिर दूसरी बार तीसरी बार जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो उसके व्यू भी चेंज हो जाते हैं कितने, और अंदर में एक नशा चढ़ना शुरू हो जाता है कि हमको, क्योंकि जब जो बाबा के भाव हैं, जिस तरीके से बाबा सुना रहे हैं, तो जब वो पकड़ में आने लगते हैं तो उस समय की जो शक्ति है, सर्वशक्तिवान की शक्ति, वो महसूस होने लगती है कि सचमुच ये कितने मुरली के महावाक्य है, फिर उनके एक अहमियत का पता चलता है। नहीं तो मुरली आई गई पड़ी और पूरा हो गया, फिर डेली का रूटीन ऐसे हो जाता है। तो मुरली के महावाक्यों को भी उसकी गहराई में, डेप्थ में जाने के लिए उसको बार बार पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा करके, भले हम पूरी मुरली नहीं पढ़े, उसका एक ही पैरा पढ़े, या बताया ना वर्ल्ड मेथड या जितने भी मुरली मेथड हमने किए हैं, जो उनमें हम मुरली 26 मेथड में से 10 मेथड या 5 मेथड ही अच्छे लगते हैं, उनको पकड़कर हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमको इस ब्राह्मण जीवन का फिर आनंद ले सकते हैं। ऐसे ग्लूकोज, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो ग्लूकोज को पेट खोल के पूरा नहीं डाल देते, वो थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है, वो तभी ताकत बनता है। तो इस ज्ञान को भी ऐसे हजम करने के लिए थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हमको समय देना है। समय का बहुत महत्व है, सारे दिन में हमारा समय कहाँ जाता है पहले तो हमको वो देखना है। उस समय हम कौन सा चिंतन कर सकते हैं, कौन सी सेवा कर सकते हैं, या किसी को सहयोग दे सकते हैं, या अपना योग कर सकते हैं, साकार दे सकते हैं, तो उस समय को हमको सफल करने के लिए ये समय की एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा और वो खुद को करना पड़ेगा। तो समय की बचत करेंगे हम, समय की बचत करेंगे तो फिर धीरे धीरे दूसरे के जाने भी अपने आप बढ़ते जाएंगे और जो भी हमारी कमी कमजोरियां उन पर हमको खुद ही अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि कहां ना कहां हमारी लीकेज तो है, तभी तो हम प्रगति महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा मन जो है पुराने स्वास्थ्य संस्कार में या पुरानी रीति रस्मों में या पुराने रिश्तेदारों में या पुरानी दुनिया में कहीं ना कहीं तो अटके हुए हैं, तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो उतना ऊंचा ज्ञान और हमारी प्रगति ना हो, ये कैसे हो सकता है। वो तो बाबा तो बनाया हुआ है मदद देने के लिए, मदद तो दे रहा है। बाबा कहते हैं अमृत वेले में आओ मेरे सामने बैठ जाओ तो मैं तुमको मदद देने के लिए। अब सारे दिन में मान लीजिए केवल अमृत वेले मदद मिलेगी, अगर हम उसी समय को अगर मिस कर देते तो सारा दिन फिर कैसे, क्योंकि पहले हमने संकल्प वो दिया, वही उसी समय हम लेने वाले देने वाले दाता से आगे नहीं बैठे तो लिया ही नहीं, तो फिर सारे दिन में अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो फिर सारा दिन भी ऐसे बीता है। तो समय को हमको देखना है कि कहां कहां हमारा समय जो जा रहा है, क्योंकि समय बहुत होता है, ऐसा नहीं हम कह सकते समय नहीं है, लेकिन समय व्यस्त बहुत चला जाता है। तो व्यर्थ की लीकेज को रोकने के लिए हमको अपने छोटे छोटे प्लान बनाने हैं, छोटे छोटे गोल निर्धारित करने हैं ताकि उनको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लंबा बना लेते कि इस सप्ताह में पूरा इतना पुरुषार्थ करेंगे और वो होता नहीं है तो फिर डिसहार्टेड हो जाते हैं। और छोटे छोटे हम जैसे आज के दिन ही है कई बार चर्चा होती है, तो आज के दिन हमको क्या करना है या दोपहर तक क्या करना है या जो जो हमारा टाइम है उसमें हमको क्या करना है, तो पहले से हमको प्लानिंग बनाना है। अगर हमारा चिंतन नहीं चलता है, कई बार होता है चिंतन नहीं चलता है, तो मुरली तो कम से कम सामने पड़ी है उसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो हम लिख ले, याद करें उसको बार बार याद करें। जब तक याद नहीं होता तो उनको बार बार देखें, क्योंकि बुद्धि भटकती है इधर उधर, तो उसको बुद्धि को भटकने से रोकने के लिए एक बहुत अच्छा चिंतन अगर नहीं होता है तो पहले मुरली के पॉइंट, और जैसे जैसे मुरली के पॉइंट हमारे अंदर आते जाते तो चिंतन स्वतः फिर चलने शुरू हो जाता है। जैसे काली व्हाट्सएप पर डाला था ब्राह्मण कितने प्रकार के, तो आपने तो 10 लिखे थे तो हमने कहा 10 करके पूरा करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने इतने कर दिए, अब मैंने कोई भी नहीं रुक रहा है तो हमारा बीच में टाइम छूट गया, फिर चिंतन करते करते 50 निकला है वो, तो वो उसमें टाइम लगा, हालांकि उस समय दूसरी भी सेवा थी, लेकिन हमने देखा उस सेवा को थोड़ा बाद किया जा सकता उसको, इसलिए बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको हमने किया। तो थोड़ा टाइम तो हमको देना पड़ेगा जो कार्य हम बाद में भी किया जा सकता है, जैसे ज्ञान योग जो हमको निर्धारित समय मिला हुआ है अमृत वेले हनुमान शाम का, उस समय जो हम कार्य कर रहे हैं जो हमको मिला हुआ है, और जो कार्य हमको दिन में करना है अगर उस समय कर रहे हैं हम उसको, तो फिर उसका उतना महत्व नहीं है क्योंकि उसको हम बाद में किया जा सकता है। तो समय को देखना है कि कौन से समय को किस कार्य को करना है, तो धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके ये जो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक भी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी आदतों को अगर डालेंगे तो ये हमारे विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। तो ये देखना है कि कहां हमारा समय जा रहा है, संकल्प कहां हमारे व्यस्त जा रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग जो हैं कहने से नहीं समझते, देखने से समझ जाते हैं। एक कुछ दिन पहले हमने छोटा सा वीडियो देखा था, व्हाट्सएप पर आया था, तो एक डस्टबिन था, डस्टबिन के बाजू में बोतल पड़ी थी खाली, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, किसी ने बोतल डाली नहीं वो, और किसी ने वो, बहुत सारे ऑडियंस ने, मतलब बहुत सारे लोग बैठे होते शायद उसी को देखने के लिए, इस बोतल को कौन इसमें डालता है। तो बहुत सारे लोग उधर से गुजर गए, 10 मिनट 15 मिनट हो गए, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर एक थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा आया उधर से, छोटा बच्चा भी साथ जा रहा था, तो छोटे बच्चे ने उठा के उसको बोतल को डाल दिया, और पूरा जो ऑडिटोरियम था, जो मॉल था एक, उस मॉल में बहुत सारी पब्लिक थी, तो पब्लिक उसको बात करने के लिए ऑलरेडी बैठी हुई थी, जो लोग आ रहे जा रहे उनकी तरफ, उनके लिए नहीं, जो उसमें बोतल डालता है उसके लिए, और उसको बहुत सारा नाम दिया गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं कौन किस दृष्टि से देख रहा है, अगर वो छोटी बात को हम कर देते हैं तो बहुत सारा इनाम जैसे भविष्य के लिए हमें जमा जाता है, क्योंकि उस आदत से शायद किसी ने क्या सीख लिया। तो बहुत सारी बातें जो हम एक दो को देखने से सीखते हैं, एक दो की व्यवहारिकता से, अगर कोई हमारे साथ बोले या नहीं बोले, लेकिन उनकी कोई छोटी छोटी आदतें ऐसी होती हैं कोई जो हमारे पुरुषार्थ में उसको सहज कर सकते हैं, जो हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो बाबा कहते ना यहाँ आते तो यहाँ कुछ दीवारों को थोड़ा नहीं देखते, मधुबन में मधुबन निवासियों को देखते हैं, तो हमारे चरित्र का निर्माण, इतना बड़ा चरित्र का निर्माण हो रहा है, तो कहां किस समय हमको कौन कौन सी बात हमारे से कोई उठा सकता है। तो बाबा कहते तुम विश्व की स्टेज पर हो, पूरा विश्व तुम्हें देख रहा है, पूरा जहान देख रहा है, पूरे जहान की आंखें तुम्हारे पर गड़ी हुई हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन क्या हम उसको सचमुच समझते हैं कि विश्व परिवर्तन की? पहले तो स्वयं के ऊपर ही परिवर्तन के टेंशन हो जाती है कभी कभी कि पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा, और बहुत सारी बातों में हमको लाइट भी रखना पड़ता है। कई बार सेवाएं आ जाती हैं तो ऐसा नहीं उन सेवाओं को हम इग्नोर करके फिर ज्ञान की तरफ, पहले तो वास्तव में जैसे हम देखते हैं जो भी हम सवेरे शाम यहाँ बैठते हैं तो हम इसको लास्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेवा के समय हम इसको याद नहीं करते हैं, क्योंकि सेवा के समय बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ कहते हैं, फिर उनको उनको बात का टाइम देते हैं क्योंकि उसमें सेवा का टाइम, तो वो बैठ जाते हैं, फिर उनको बता दिया जाता है कि नहीं आप लोग बात आई। उसमें अगर हम इसका करें तो जो हमारे सहयोगी साथी सेवा में होते हैं तो वो देखते हैं कि जिस सेवा को हमको यहाँ रखा गया है या कहीं भी हम सेवा में हमको जिम्मेवारी दी गई है उसको हम छोड़कर ज्ञानियों की बातें करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। कहाँ कौन सी बात करनी है वो हमको थोड़ा देखना चाहिए ताकि हमारे सहयोगी साथी भी डिस्टर्ब नहीं हो और सेवाएं भी निर्विघ्न रूप से चलती रहें। तो हम बाबा कहते हैं तुम बच्चे विश्व की स्टेज पर हो और पुरुषार्थ की टेंशन नहीं करनी है। जैसे बताया ना, अगर कभी योग में टाइम नहीं मिलता है, सेवा है, कोई जरूरी टीचर बहन ने सेवा दे दी या कोई समझने के लिए जिज्ञासु आ गया, तो हम ये ना हलचल में आए कि आज तो योग ही रह गया। वास्तव में योग लगाने की जो परिपाटी है लगाने की नहीं है, बाबा ने कहा तुम हो ही निरंतर योगी। इस स्मृति को हम भूल जाते हैं कि हम योग लगाना है, हमको योग लगाना है। योग तो वास्तव में हमारा लगा हुआ है, क्योंकि हमारा लाइफ जो बाबा ने उस दिन कहा ना, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके उनके आगे सहयोग स्वतः ही रहता है। तो ये एक मन की स्थिति है, ये हमारे मन की स्थिति है कि बाबा के प्रति हमारा समर्पण भाव कितना है। समर्पण भाव है तो वो स्थिति स्वतः बनती, सहयोग स्वतः समर्पित हो जाएगा। तो हम अगर किसी को ज्ञान सुना रहे हैं योग के टाइम में भी अगर और हमको जिम्मेदारी दी गई है, सेवा दी गई है, तो वो भी ये योग से बढ़कर है, योग युक्त तरीके से होकर, योग युक्त स्थिति में रहकर हम उनको अगर ज्ञान सुनाते हैं तो हमारी वो प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे योग में जमा नहीं होगा, नहीं, वो हमारा एक डबल जमा हो सकता है। हम उसको योग की अनुभूति भी कराएं, ज्ञान भी सुना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो ये छोटी छोटी जो आदतें होती है इस ब्राह्मण जीवन में हमको इन पर पूरा अटेंशन रखना है ताकि हम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते जाए। जैसे एक एग्जाम्पल था दशरथ मांझी, है ना, दशरथ मांझी छत्तीसगढ़, तो कितना बड़ा पहाड़ उन्होंने थोड़ा करके 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 पूरा पहाड़ सड़क बना दी, एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय का। तो बाबा कहते फूरी फूरी से बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो ऐसे ब्राह्मण जिनमें छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो हम ये सोचते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ तो करें लेकिन आगे नहीं बढ़े, लेकिन कोई ना कोई छोटे छोटे ऐसे जो बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन रही है। तो इजी योग है, सहज योग है, लेकिन सहज तरीके से इसको समझना भी है, सहज तरीके से इसको इसका आनंद भी लेना है, और हम फिर निर्विघ्न मन इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पर हमको ध्यान रखना है इस ब्राह्मण जीवन में धीरे धीरे। कौन से ऐसा नहीं है कि जो हमारे में जैसे पुरुषार्थ में आलस्य अलवेलापन उसको धीरे धीरे छोड़ना, नहीं, उसको तो तुरंत छोड़ना है। ऐसा नहीं कोई खाने पीने की आदत है उसको तो बाहर की चीजें उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, नहीं। हाँ, वो होते हैं जिनको बहुत नशेड़ी होते हैं, जो बहुत पियक्कड़ लोग होते हैं, तो उनको तुरंत छोड़ने के लिए कहेंगे तो उनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे अभी उस स्टेज से आगे बहुत चले गए, तो हमको कौन सी बातें धीरे धीरे छोड़नी है, कौन कौन सी बातें धीरे धीरे अप्लाई करनी है, थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है, तो ये हमको थोड़ी थोड़ी अगर हम इस पर अटेंशन रखेंगे, नजर रखेंगे, अपने ऊपर पहरा देंगे, तो हम इस ब्राह्मण जीवन की जो है सार्थकता दूसरों के प्रति हम सिद्ध कर सकते हैं। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हमारे चरित्र से होगी है, जितना मर्जी हम ढिंडोरा पेट लें, जितना मर्जी संसार में प्रचार प्रसार कर लें, जब तक हमारे में वो गुण नहीं आ रहे हैं, हमारे में वो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो संस्कार नहीं आ रहे हैं, तो कैसे कौन मानेगा। तो स्वयं के ऊपर अटेंशन देना है, इस ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव करना है। हाँ, योग को धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं? हाँ, योग को धीरे धीरे जल्दी से बढ़ाना है। हाँ, ये एक बहुत टेंशन होती है लोगों को, जैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को 8 घंटा योग करना है,
अब 8 घंटा कोई बैठ नहीं सकता, मुसीबत हो जाती है और ही टेंशन हो जाता है उसको। तो वास्तव में योग को ये ऐसा नहीं कि हमको 8 घंटे बैठना है, उसमें बहुत सारी चीजें, 8 घंटा हमारे जो हैं वो बाबा के सेवा में भी हो सकते हैं, बाबा के याद में भी हो सकते हैं, जो भी स्थूल सूक्ष्म सेवा करते हैं। और योग तो जो है वास्तव में लगाने के लिए उसके संबंध हैं, बाबा से हम संबंध जोड़ सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं 26 मेथड में, हाँ वो 26 मेथड उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, और बीच बीच में जो ड्रिल मिलती है उसके ऊपर हम ज्यादा अटेंशन दे तो फिर योग को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं सारे दिन में अपनी अपनी दिनचर्या के अनुसार 1 मिनट 2 मिनट जब भी मिलते हैं अशरीरी हो जाओ, तो बीच बीच में अगर हम करेंगे तो हमारी योग जो एक निरंतर याद की स्थिति बनी रहेगी। अगर सारे दिन में अटेंशन नहीं रखते हैं तो फिर योग की स्थिति नहीं बन पाती है, फिर आप देखेंगे अनुभव करेंगे कि शाम के टाइम में फिर वैसे ही होता है। अगर सारे दिन में हमने बीच बीच में अटेंशन रखा है तो शाम नुमा शाम भी फिर हमारी स्थिति वैसी रहती है। तो योग को बढ़ाने के लिए छोटा सा भले कागज जेब में डाल दें, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट, हमको 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। जैसे आज के दिन समझ लीजिए 2 घंटे क्वालिटी का योग करना है, या 4 घंटे, 1 घंटा शाम 1 घंटा शाम, या चलते फिरते तो 3 घंटा या 4 घंटा, थोड़ा थोड़ा लक्ष्य रखना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने 8 घंटा का 8 घंटे कर ले, क्योंकि सबके अपने सर्कमस्टांस है, अपनी अपनी परिस्थितियां, अपना अपना कर्म क्षेत्र है, तो उसके अनुसार हमको एडजस्ट करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे 1-2 घंटे के योगी नहीं हो, तुम निरंतर योगी हो, तो 1-2 घंटे हम याद करते हैं, बाकी घंटे किसको याद करते हैं? फिर तो बाहर वालों को याद करते हैं, तो फिर समर्पित जीवन काहे का, बाबा से काहे जुड़े। तो वास्तव में हमारा है ही योगी जीवन, जैसे श्वास निरंतर है ऐसे याद भी निरंतर है। तो याद की बहुत सारी स्टेजें हैं, जैसे मनन चिंतन है तो वो भी बाबा की याद में है। देख कई बार हम प्राय देखते हैं उतनी अनुभूति योग में नहीं होती है जितना मनन चिंतन करते अनुभव कर सकते हैं, उतना जैसे बाबा को अगर संबंध में योग में बैठ के याद करेंगे, अगर हम उसको लिखेंगे तो वो ज्यादा अनुभूति होती है। जैसे बाबा को साधन के संबंध में कैसे याद करना है ना, अगर हम 10 मिनट बैठ जाते हैं और वो लिखते लिखते उसकी अनुभूति होती है, उसकी इतनी अनुभूति योग में बैठे नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारा मन बहुत एकाग्र हो गया, क्योंकि उसके लिख रहे हैं हम, मन को काम दे रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो योग का ऐसा नहीं कि हमको केवल बैठ के करना है, उसमें मनन चिंतन करें, ड्रिल करें, या बाबा से जो महावाक्य है उनको हम याद करें, तो ये हमारा जीवन ही योगी जीवन है। और कोई प्रश्न? धारणा धीरे धीरे करनी है, धारणा तो तुरंत धारणा तो तुरंत होनी चाहिए, धीरे धीरे का टाइम क्या? 37 गुण वो वास्तव में आते जाएंगे, अगर हम ये 3 सब्जेक्ट अब ध्यान के तो चौथा अपने आप आ जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं एक गुण को पकड़ो तो बाकी सारे आ जाएंगे, पूरी फैमिली आ जाएंगे। जैसे घर में बच्चा गुम होता है तो सभी का ध्यान कहाँ चला जाता है, ऐसे किसी एक गुण को पकड़ लो उसको छोड़ो नहीं, बाकी गुण अपने आप ही आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ कौन से गुण में करें? कोई भी एक गुण, जैसे चिमन भाई है उनमें कौन सा गुण है जी? अथक, हाँ उसी अथक सेवादारी, उसी के कारण अनेक सारे गुण है वो। हाँ सहन शक्ति का तो मुकाबला ही नहीं है कोई, कोऑपरेटिव है। तो ये था धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमको, हाँ यही तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अभी स्पीकर की बारी थी तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमारे पुरुषार्थ की ग्रोथ होती रहेगी, है ना। ओम शांति।